नमस्कार शिक्षार्थियों, आज हम लोग माध्यमिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत मनोविज्ञान विषय में आपके पार्ट नंबर 2 की चर्चा करेंगे। और पार्ट नंबर 2 में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे मनोविज्ञान की पद्धतियों के बारे में, मेथड्स ऑफ टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। इससे पहले कि मैं पद्धतियों की बात करूं, मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगी कि पिछले चर्चा में हम लोगों ने मनोविज्ञान से आपका परिचय करवाया था, और उस परिचय में मैंने आपको डेफिनेशन, जो परिभाषा मनोविज्ञान की बताई थी, उसमें मैंने बताया था कि मनोविज्ञान जो है वो व्यक्त वो अव्यक्त, मतलब कि जो हम लोग दिखा रहे हैं या फिर जो चीजें हम नहीं दिखा रहे हैं, दोनों प्रकार के व्यवहारों का क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो मनोविज्ञान कहलाता है। जहां पे हम लोग अध्ययन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अध्ययन है आपके अनुभवों का अध्ययन, आपके मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, जो आपके अनुभव हैं वो आपके व्यवहार में आ जाएंगे तो उनका अध्ययन, आपके मानसिक क्रियाएं, आपके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है उनका अध्ययन, और फिर साथ में आपका जो आपके अनुभवों और आपके जो मानसिक क्रियाओं हैं उसके उसके पे डिपेंड करते हुए जो आपका व्यवहार है उसका अध्ययन करना, तो ये सब चीजें जो है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत आती हैं। जब हम बात कर रहे हैं अध्ययन की, देखिए मनोविज्ञान जो है वो आप बात कर रहे हैं कि वो ओवरऑल जो है वो क्रमबद्ध और वैज्ञानिक आपका जो है अध्ययन है। अब ये अध्ययन किया कैसे जाता है, दैट इज अ क्वेश्चन। वो आज हम उसी चीज के बारे में बात करेंगे कि मनोविज्ञान जो अध्ययन करता है उस अध्ययन को किस तरह से किया जाता है उसके बारे में। तो मेथड्स जो हैं, जो पद्धतियां हैं हमारे मनोवैज्ञानिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए, उसके बारे में बाद में मैं चर्चा करूंगी। उससे पहले, सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के उपागम, उपागम मतलब अप्रोचेस, कि किन किन क्या क्या अप्रोचेस हैं जो आपके मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए ली गई हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कि आपकी जो भी मनोवैज्ञानिक जो उपक्रम है आपके या उपागम है जो भी हैं, उनका हम लोग बहुत शॉर्ट इसमें जो है वो डिस्कशंस करेंगे। अप्रोचेस जब हम बात कर रहे हैं, तो देखिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारी स्टडीज करी, चीजों को पढ़ा, देखा, सुना, ऑब्जर्व किया, और फिर उसके बाद कुछ निष्कर्ष पे आए। उस निष्कर्ष में आने में भी क्या है कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग धारणाएं हैं, और वो जो अलग अलग धारणाएं हैं उन्हीं को हम अलग अलग उपागम की श्रेणी में लेते हैं, उन्हीं को हम लोग जो डिफरेंट अप्रोचेस लेंगे। तो किस मनोविज्ञान ने किस मनोवैज्ञानिक ने किस पर्टिकुलर अप्रोच को प्रेफर किया, या उन्होंने व्यवहार के अध्ययन के लिए किस उपागम को चिन्हित किया, अब उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली जो बात है, दैट इज अ बायोलॉजिकल अप्रोच। देखिए बायोलॉजिकल अप्रोच जब हम बात कर रहे हैं, दैट इज अ जैविक उपागम, और ये चीज जो है ये मनोवैज्ञानिक ने तो बताया ही बताया है। जब मैं इसे डिफाइन करूंगी तो आप भी देखिएगा कि आप भी इन चीजों को अगर ध्यान से सोचेंगे तो कहीं ना कहीं अपने दैनिक जीवन में इसका असर देख पाएंगे। जब हम बात कर रहे हैं जैविक उपागम की, तो जैविक उपागम जो है ये बात करता है जैविक संरचनाओं की। जैसे कि जब हम संरचनाओं की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपका पर्टिकुलर फिजिकल अपीयरेंस की बात हो रही है, फिजिकल अपीयरेंस की बात हो गई, जैसे कि आप कैसे दिखते हैं, आपके जीन्स कैसे हैं, आपका जो ये है, आपका जो सारा सिस्टम है, आपका ब्रेन, आपका हार्मोन्स, आपका न्यूरो सिस्टम, इन सब चीजों की जब हम लोग वहां पे अध्ययन करें तो हम लोग किसी ना किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। अब देखिए आप न्यूरो सिस्टम को, हार्मोनिकल सिस्टम को, इन सब चीजों को तो आप नहीं देख पाएंगे, मगर आप देखिए कहीं ना कहीं अगर आप अपने आसपास में ध्यान देखें तो कई बार क्या होता है कि आप किसी बच्चे को देखते हैं तो आप एकदम से कहते हैं कि हो ना हो ये उसका बेटा हो सकता है, उसकी बेटी हो सकती है। हाउ यू कम टू नो, आपने कैसे अंदाजा लगाया कि ये उनकी बेटी या बेटा हो सकता है, या इनके माता पिता जो हैं वो वाले लोग हो सकते हैं? क्योंकि जो आपने उनकी जैविक संरचना देखी, जो आपने उनकी फिजिकल अपेयरेंस देखी, वो फिजिकल अपेयरेंस सम हाउ कुछ हद तक उसके अपने पेरेंट्स के साथ, उसके परिवार के लोगों के साथ मिलती जुलती थी, इसलिए सम हाउ आपको ये अंदाजा लगा कि ये उस परिवार से संबंधित बच्चा या बच्ची है। तो जैविक संरचनाओं में आपका फिजिकल अपेयरेंस हो जाता है, जैसे कि आप एक पर्टिकुलर रीजन के लोगों को देखेंगे तो आप उस पर्टिकुलर रीजन के लोगों को देख के एकदम से कह देते हैं कि ये इस कम्युनिटी के, इस रीजन के, इस रिलीजन के लोग हैं, ठीक है। तो वो जो है, वो उनकी जो संरचना है, उस संरचना के आधार पर, और वो संरचना के आधार पे भी कैसे आपको पता लगा, क्योंकि आपने अवलोकन कर रखा है, आपने उन चीजों को देख रखा है और आपने उन्हें जनरलाइज किया हुआ है कि इस तरह के जो लोग हैं वो आपके एक पर्टिकुलर जो है कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जैसे कि छोटा सा अगर बच्चा है, मैं बहुत बड़े बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्वेशन में होगा, मगर जो छोटा बच्चा है जिसने अभी तक नहीं देखा, तो उन्होंने देखा कि जो लोग जिनके बाल बड़े होते हैं और जिन्होंने पगड़ी पहनी होती है, वो जो है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो उन्हें पता है कि वो सरदार जी हैं, तो वो उन्हें एकदम से उन्होंने उनकी जो संरचना है उस संरचना के आधार पर जो है वो उन्हें डिफ्रेंशिएट कर लिया। तो जो जैविक उपागम है वो आपकी संरचनाओं के आधार पर जो है वो अध्ययन करता है, और फिर उस अध्ययन के अंतर्गत ही वो भावनाएं, उसकी स्मृतियां, उसके संवेग, उसका व्यवहार जो उसके नियंत्रण में है, वो उनका भी अध्ययन करते हैं। अब देखिए आप, कि मैंने कहा कि हमने संरचना के आधार पर जो है वो आपका रीजन, कम्युनिटी, इन सब चीजों का पता लगता है। सिमिलरली पर्टिकुलर कम्युनिटी के एक पर्टिकुलर ट्रेडिशंस होंगे, उनका अपना कल्चर होगा, उनका अपना बिलीफ सिस्टम होगा, तो डेफिनेटली जो हमारा बायोलॉजिकल अप्रोच है वो फिर उनके बारे में भी बात करेगा। या हम बात कर सकते हैं कि अगर हमें पता है कि किसी का ये बिलीफ सिस्टम है तो वो इस कम्युनिटी से है, या वाइस वर्सा उल्टा क्या हो सकता है, ये इस कम्युनिटी से है तो इसका मतलब इसका बिलीफ सिस्टम ऐसा होगा। तो जो हम लोग उनकी संरचनाओं और उनके जो ट्रेडिशंस है, कल्चर्स है, उनकी जब बात करेंगे, देन दैट कम्स अंडर द जैविक उपागम के बात करेंगे। ये जो है, जो आपका मानव व्यवहार है वो देहिक आधारों पर भी प्रकाश डालता है, मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ इसके बारे में। द सेकेंड वन इज मनोविश्लेषणात्मक उपागम, साइको एनालिटिकल अप्रोच, और ये जो उपागम है ये बेसिकली आपका जो है वो साइकोलिटिकल अप्रोच है, और ये साइकोलॉजी में जो सबसे ज्यादा जो यूज होती है दैट इज अ मनोविश्लेषणात्मक उपागम। क्योंकि हम लोग मनोविज्ञान के अंतर्गत जब भी बात करेंगे तो हम मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की ही बात करेंगे। नो डाउट कि बाकी अप्रोचेस भी मैटर करती हैं, मगर उन अप्रोचेस को भी हम मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के अंतर्गत ही अध्ययन करेंगे। और जो मनोविश्लेषण उपागम है, इसके जो जनक थे वो आपके फ्राइड थे, और इन्होंने जो है अचेतन लिबिडो ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। यहाँ पे जो सबसे बड़ी समझने वाली बात है वो ये है कि जो फ्राइड ने बात करी, उन्होंने जो हमारा चेतना का स्तर है, उस चेतना के स्तर को तीन भागों में बांट दिया। एक आपका था चेतन स्तर, और उसके बाद है अब चेतन, और तीसरा है अचेतन। तो जहां पे बात चेतन की आती है, दैट इज द कॉन्शियस माइंड, जो हम डे टू डे एक्टिविटीज आपकी, आप अपने होश विवाश में जो व्यवहार कर रहे होते हैं वो आपका चेतन मन है। फिर आता है अब चेतन मन वो बातें हैं आपकी जो आपके सीधे व्यवहार में नहीं है, मगर वो आपके अंदर कहीं दबी हुई है, और वो जो आपका व्यवहार है उस व्यवहार को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। इसी तरह से अचेतन है, अनकॉन्शियस माइंड, वो बहुत ही गहरा बहुत डेप्थ में है, जिसका हमारा डे टू डे जो आपकी रूटीन्स हैं उसमें उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। मगर इन केस ऑफ क्रिटिकल सिचुएशंस, इन केस ऑफ जो आपकी एकदम से चेंजेस है, वहां पे आपका अचेतन मन का जो है प्रभाव देखने को मिलता है। दैनिक जीवन में आप अपने चेतन मन से, अपने जो आपका होश में है, आप उसमें जो है काम करते हैं। इससे आप इस एग्जाम्पल से लीजिए कि आप चेतन मन से जो है एक गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, आप सड़क को देख रहे हैं, आप अपने एक्सेलरेटर, आपने अपना ब्रेक, क्लच, स्टेयरिंग, ब्रेक, अपना गियर, इन सब पे आपका पूरा ध्यान है। आप पूरे होशो हवास में अपने आप में एक गाड़ी चला रहे हैं और आपको दूर दूर तक सड़क पर कोई भी नहीं दिख रहा है, आप आराम से गाड़ी चला रहे हैं, ये चेतन मन है। मगर देखिए, जैसे ही कहीं से भी एकदम से कोई दौड़ता हुआ जानवर, दौड़ता हुआ बच्चा या कोई भी चीज आपको ऐसे एकदम से दिखती है, तो एकदम से ब्रेक। आप उस टाइम चेतन नहीं थे, आप उस टाइम जागरूक नहीं थे कि आपको एकदम से ब्रेक लगानी पड़ेगी, मगर आपके अवचेतन मन में, अचेतन मन में जो एक ये था सिक्योरिटी थी जो आपका बना हुआ है कि इनकेस ऑफ डेंजर आपको एकदम से ब्रेक लगानी है, वो आपने एकदम से वहां पे अप्लाई कर दी। तो आपका जो बेसिक है, जो भी आपका चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन में जो है, वो चेतन मन जो है वो हमारा व्यवहार में हमें दिखता है, बाकी अवचेतन और अचेतन मन जो है वो हमें किन्हीं किन्हीं पर्टिकुलर परिस्थितियों में देखते हैं। कई बार आप देखते होंगे कि एक सभ्य सभ्य सा आदमी, इंसान, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो एकदम से इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि आप बोलेंगे कि आप भी ऐसे कर सकते हैं। आई डोंट बिलीव, मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि आप भी इस तरह से बिहेव कर सकते हैं। मगर वो अचेतन मन में या उनके अवचेतन मन में कोई पीड़ा, कोई तकलीफ इस तरह से हो सकती है जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में सामने आएगी। अब यहाँ पे फ्राइड जो है वो बात करते हैं जब अचेतन मन की, तो वो बात करते हैं कि अगर हमें किसी भी व्यक्ति का अध्ययन करना है तो चेतन मन के अध्ययन के साथ साथ, जो उसका व्यवहार है, जो सामने दिख रहा है, उसके अध्ययन के साथ साथ हमें उसके अवचेतन और अचेतन मन का ध्यान अध्ययन करना है, क्योंकि जो सामने है वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, वो सिचुएशनल भी हो सकता है, वो परिस्थिति के विवश होके भी हो सकता है, मगर जो चेतन मन है और जो आपका अचेतन मन है, वहां पे जो चीजें हैं वो वही हैं जो आप एग्जैक्टली हैं। तो आपको किसी को भी अगर समझना है तो आपको उसको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, उसे बहुत गहराई से अवलोकन उसका करना पड़ेगा और उसके अवचेतन और अचेतन मन को समझना पड़ेगा, ताकि हम उसका जो है व्यवहार, जो उसका मानव व्यवहार है, वो उसको समझ सके, क्योंकि मानव व्यवहार जो है वो अचेतन प्रेरणाओं द्वारा ही निर्धारित होता है। जो हमारे मन के अंदर जो दबी हुई बातें हैं उन्हीं के बेस पर हमारा जो व्यवहार होता है। हाँ, कई बार क्योंकि वी आर ए सोशल एंड कल्चर्ड एनिमल, हम सामाजिक और कल्चर्ड एक तरह से बीइंग्स है, तो उस केस में हम लोग चेतन मन में ध्यान रखते हुए जो है वो कई बार अपनी प्रक्रियाएं देते हैं। जैसे कि मान लो मुझे किसी बात पे बहुत गुस्सा आ रहा है, जैसे कि मैंने एक बार पहले भी एग्जांपल दिया था कि मान लो किसी को अपने टीचर पे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, हम गुस्सा दिखा थोड़ी सकते हैं। तो हम उस प्रक्रिया को, हमने उस प्रक्रिया को दबा लिया, तो वो चेतन मन में तो हमने उस चीज को अपना कंट्रोल कर लिया, मगर अचेतन मन में और अवचेतन मन में वो बना रहता है और वो कुंठाएं पैदा होती हैं। इसलिए वो कुंठाएं या वो कोई भी चीज जो वहां पे है उसे ऑब्जर्व करने के लिए हमें जो है वो अवचेतन मन को जो है वो स्टडी करना होता है। इसके अलावा हमारे पास है मानवतावादी उपागम, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, और अगर ह्यूमनिस्टिक की अप्रोच की बात करें तो ये आपका जो था वो अल्टरनेट है, फ्राइड के विपरीत है ये मानवतावादी उपागम के प्रति। जहां पे फ्राइड बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की, यहाँ पे बात कर रहे हैं रोजर्स जो हैं वो बात कर रहे हैं मानवता की, ह्यूमैनिटी की, ताकि हम बात कर सके जो भी वर्तमान परिस्थिति के जो चेतन अनुभव हैं और जो जीवन के दौरान उनके जो अनुभव हैं उनकी जो भूमिका है वो वहां पे जो है वो मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए जरूरी है। यहाँ पे देखिए, नो डाउट कि जो आपका बिहेवियर है, जो भी किसी भी ह्यूमन बीइंग का व्यवहार है, वो किसी एक फैक्टर के तहत नहीं होगा, उसमें सारे फैक्टर्स होंगे। इसीलिए मैंने आपसे बात करी थी कि मनोविश्लेषण उपागम के अंतर्गत जो है वो हम सारी ही समागम को, सभी उपागम का जो है वो ले लेंगे। यहाँ पे देखिए, आप जो ये मानवतावादी रूह है ये कह रहे हैं कि चेतन अनुभव के साथ साथ उसके जो उसने अपने जो उसके अनुभव हैं, जो उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है और उनके जो अनुभव है, उनका भी उसके बिहेवियर पे असर पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। हम बात कर रहे थे कि मान लो आप किस एटमोस्फेयर पे रह रहे हैं, किस तरह का आपका वातावरण है, उस वातावरण का डेफिनेटली आप पे असर होगा। जैसे कि मैंने अभी अभी आपसे पहले बात करी थी कि आपकी जो जैविक संरचना है, आपकी जो बिलीफ सिस्टम है, वो सब किस पे डिपेंड कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक वातावरण में रहने की वजह से। ठीक है, तो वहां के जीन्स वैसे थे, वहां की कम्युनिटी के बिलीफ सिस्टम ऐसे थे, इसलिए आपका भी वैसा हो गया। क्यों? क्योंकि आपके अनुभव वैसे थे। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बच्चे को बाय बर्थ अगर हम लोग किसी दूसरी कम्युनिटी में एस्टेब्लिश कर देते हैं, तो डेफिनेटली हो सकता है कि उसके जीन्स जो है वो तो सेम हो, मगर उसके जो बिलीफ सिस्टम है वो दूसरी कम्युनिटी के हो सकते हैं। और सिमिलरली अगर वही हम लोग दूसरी जगह उन्हें शिफ्ट कर देते हैं, तो आफ्टर नंबर ऑफ इयर्स या आपके कुछ एक जनरेशन के बाद, वी विल फाइंड कि उनमें जो जीन्स हैं उनमें भी चेंजेस आने लग गए, क्योंकि दैट इज द कॉम्बिनेशन, अब आप दूसरे किसी जीन्स के साथ एसोसिएटेड है। इसलिए तो आपका जो अनुभव है वो भी वहां पे मैटर करते हैं। और यहाँ पे जब अनुभव की हम बात कर रहे हैं, तो दो तरह के अनुभव हैं, एक तो हमारा अपने साथ अनुभव, स्व अनुभव, और दूसरा उनका दूसरों के साथ अनुभव, अपने वातावरण, अपने सहयोगियों, अपने सहपाठियों, अपने क्लीग्स, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली के साथ जो उनके अनुभव है, उनका जो है अध्ययन जो है वो यहाँ पे हम बात करते हैं। यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि आपके सकारात्मक विचार हो या आपके सकारात्मक ना भी हो, तो जो भी है आपके, उनको हम लोग जो है व्यवस्था लाके, अनुभवों को चेंज करके जो है वो आपकी व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। जहां पे हम बात कर रहे थे मनोविश्लेषण उपागम की, तो वहां पे ये बात हो रही थी कि जो चेतन अवचेतन में है उसी का वही आधार है उनके, जो भी उसका व्यवहार है, अगर हम चेतन और अवचेतन में उसके चीजों को चेंज कर दें, तो डेफिनेटली जो है वो उसका व्यवहार में भी उसके चेंज आ जाएगा। मगर यहाँ पे मानवतावादी वो कहते हैं कि अगर हम लोग किसी तरह से भी किसी पर्टिकुलर कंडीशनल जो है वहां पे वातावरण का चेंज कर दें, तो डेफिनेटली हम लोग वहां पे व्यवहार में भी परिवर्तन ला सकते हैं। व्यवहारवादी उपागम की अगर हम बात करते हैं, तो व्यवहारवादी जो बिहेवियरिस्ट है वो बात करते हैं कि जो आपका ये अप्रोच है ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव अप्रोच है और ये प्रत्यक्ष व्यवहार का विश्लेषण करती है। हम बात कर रहे हैं व्यवहारवादी उपागम, व्यवहारवादी उपागम मतलब बिहेवियरिस्ट अप्रोच जो आपके व्यवहार को देख रही है, जो आपका सामने सामने जो आप व्यवहार कर रहे हैं उस व्यवहार का विश्लेषण करते हैं। आप कैसे उठ रहे हैं, आप कैसे बैठ रहे हैं, आज कैसे खाना खाते हैं, कैसे बात करते हैं, दूसरे से हंसते हैं, तो ये जब हम अवलोकन करते हैं धीरे धीरे, और उस अवलोकन के आधार पे, आपके व्यवहार के आधार पर ही हम लोग जो है वो ये जो है अध्ययन कर सकते हैं कि आपका किस तरह का व्यवहार है। व्यवहारवाद के जो जनक थे वो जेवी बाटसन थे, और वो जो है ऑब्जेक्टिविटी जो है उस पे वो ज्यादा एफर्ट्स लगाते थे, ज्यादा प्रेफर करते थे, और उनका जो विश्लेषण था वो व्यवहार के ऊपर ही था। वो इस बात का भी समर्थन करते हैं कि जो व्यवहार है उसका जो निर्धारण है वो आपका उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच में एक कॉम्बिनेशन है, उसके बीच में एक साहचर्य है। मतलब कि जो आपका स्टिमुलस है और जो रिस्पांस है, व्यवहार व्यवहार जो है वो कह रहे हैं कि हम व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, मतलब जो आप प्रक्रिया, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है उस प्रतिक्रिया का अध्ययन वहां पे किया जा रहा है। और ये प्रतिक्रिया कैसे आ रही है, जो भी स्टिमुलस आपके पास है। देखिए यहाँ पे जैसे स्टिमुलस और प्रतिक्रिया की हम बात करेंगे, तो देखिए प्रति क्या हो गया, ये कहते हैं कि आपने देखा सांप और आपको लगा डर, आपने क्या किया, दौड़ लगा दी। तो स्टिमुलस क्या था, सांप देखना, ठीक है। और आपका यहाँ देखिए चीजें एसोसिएटेड है, मतलब कोई एक चीज को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख रहा है, दूसरी को सेकंड में और तीसरी में तीसरी में, जबकि दूसरा मनोविज्ञान की जो प्रायोरिटीज है वो चेंज हो जाएंगी, मगर सम हाउ चीजें जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो सेम है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्टिमुलस थी सांप देखना, सांप देखा आपने, सांप देख के आपको क्या हुआ, डर लगा। डर कैसे लगा, क्योंकि आपके कहीं अचेतन मन में ये पता है कि सांप एक खतरनाक जानवर है जिसके डसने से आपकी मौत हो सकती है, तो आपके अचेतन मन ने एकदम से प्रतिक्रिया करी कि ओ ये तो खतरा है। खतरा करते ही आपने क्या प्रतिक्रिया की, दौड़ लगा दी। तो वो जो आपका था दौड़ लगाना, वो आपका बिहेवियर हो गया। तो स्टिमुलस या प्रतिक्रिया थी, उसमें बीच में हमारा अचेतन मन भी है, जिसने ऑब्जर्व किया वो हमारा चेतन मन भी है, तो सब चीजें आपकी हैं। तो यहाँ पे मगर जो व्यवहारवादी उपागम है उसमें जो बाटसन है वो सबसे ज्यादा समर्थन इस बात का करते हैं कि व्यवहार का जो निर्धारण है वो स्टिमुलस और उस स्टिमुलस के बेस पर जो आपका प्रतिक्रिया है उसके बीच में जो आपका एक कॉम्बिनेशन कह सकते हैं या साहचर्य कह सकते हैं, बैलेंस जो बनाते हैं उस पे निर्धारित होता है। अगर हम लोग जो है उस चीज का जो आपका कॉम्बिनेशंस है उनमें जैसे जैसे हम फेरबदल करेंगे तो हम आपके व्यवहार को भी उचित आकार प्रदान कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम लोग स्टिमुलस चेंज कर दें तो डेफिनेटली, अब यहाँ पे देखिए अगर मैं आपको सांप देखने की बजाय ये बात करूं कि आपके सामने आपकी फेवरेट डिश होगी तो आप क्या करेंगे, आपकी फेवरेट डिश होगी तो उस केस में आप कोशिश करेंगे कि आप उसको किस तरह से खाएं, तो उस केस में आप वो काम करेंगे जिसमें वो आपको एज ए रिवार्ड मिल सकती है या आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। अब आप वहां से भागेंगे नहीं, अब आपकी कोशिश उसको प्राप्त करने की होगी। तो वो हमें ये देखना है कि हमें जो आकार है, जो हमें व्यवहार आप किसी बच्चे से चाहिए, उस बच्चे के हिसाब से हम लोग स्टिमुलस क्रिएट करेंगे और उस स्टिमुलस के होने के हिसाब से वहां पे प्रतिक्रिया होगी और उस प्रतिक्रिया को बार बार रिपीट कराने से ही हमारा जो है वो व्यवहार वहां पे डेवलप हो जाएगा। फिर आपका संज्ञानात्मक उपागम कॉग्निटिव उपाय, और ये आपका अल्टरनेटिव है व्यवहारवादी में। व्यवहारवादी में हम कह रहे हैं कि हम स्टिमुलस दे रहे हैं और वो जो है वो आपका प्रतिक्रिया करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि आपका संज्ञानात्मक जो है वो उसका अल्टरनेट है, इसमें जो है हम लोग सूचना देंगे आपको, मतलब आपको ज्ञान देंगे, ज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया गया है और उसके अंतर्गत हम प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, चिंतन, भाषा, तर्क, समस्या समाधान तथा निर्णय लेने आदि जैसे मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत जो है वो एक पर्टिकुलर व्यवहार को जो है वो डेवलप करेंगे। तो हम लोग जब बात करते हैं कि बचपन में बच्चों को एक अच्छा वातावरण देना चाहिए, उनको अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए, उनसे अच्छी बातें करनी चाहिए, उनके सामने एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से बच्चों को जो है वो वहां पे शिक्षा दे रहे होते हैं, उन्हें कुछ चीजों की सूचनाएं दे रहे होते हैं ताकि उन सूचनाओं के आधार पर वो जो है वो अपना जो है व्यवहार उसको जो है डेवलप कर सके। यहाँ पे ये जो है ये इस अप्रोच की मेन जो इम्पोर्टेंस है ये है कि जो भी सूचना हम प्राप्त करते हैं अपने प्रवेश का, उसका हम सतर्कतापूर्ण निरीक्षण करते हैं। देखिए आपने बच्चों को देखा होगा कि बच्चे अपने पेरेंट्स को, अपने छोटे बड़े जो भी ब्रदर सिस्टर हैं उनका अवलोकन करते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं, और उससे भी बड़ी बात है सिर्फ वो देखते नहीं है, वो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। क्यों पूछते हैं, क्योंकि उनके मन में जिज्ञासा है, उन प्रश्नों का सही तरीके से सही आंसर देने में ही उनका जो व्यवहार है वो सही डेवलप हो पाएगा। तो उनको जब भी आप ज्ञान दें तो सही तरीके से ज्ञान दें, ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई क्यूरियोसिटी वहां पे ना बनी रहे। ये मुख्य जो आपका उपागम है, ये जो है व्यवहार और मानसिक क्रियाओं को सबसे बेहतर तरीके से तब तक समझा जा सकता है जब तक हम उनके सूचना संसाधन के संदर्भ में, जो उनको सूचना दी गई है उसके संदर्भ में, आप जो वो किस तरह से उनकी मानसिक प्रक्रिया चल रही है वो हम समझना चाह रहे हैं, तो हम ये समझें कि उन्होंने जो सूचना उनको दी गई वो किस तरह की सूचना दी गई। तो चाहे हमारी अप्रोच कोई भी हो, हम चाहे किसी भी अप्रोच की बात करें, चाहे वो आपकी जैविक संरचना की बात कर रहे हैं, चाहे वो आपकी मानसिक संरचना की बात कर रहे हैं, चाहे वो आपके साइको एनालिटिक अप्रोच की बात करें, चाहे हम ह्यूमनिस्टिक बिहेवियरिस्टिक और कॉग्निटिव अप्रोच की बात करें, पर सबके सब अप्रोचेस का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हम मानव के आप अध्ययन कर सकें, और उसके जो अध्ययन के आधार पर जो उसका व्यवहार है, अगर वो व्यवहार उचित अगर नहीं लग रहा है हमें किसी भी संदर्भ में, तो उस संदर्भ में हम उसे जो है वो वहां पे दूसरी तरह की क्रियाएं करा के उस व्यवहार को सकारात्मक चेंज किया जा सके, सकारात्मक उसमें बदलाव लाए जा सके। तो जो मनोविज्ञान है वो इसी इन्हीं सब बातों के बारे में बात करता है कि किस तरह से, देखिए आपने देखा होगा कि जो हमारा आसपास है, आस पड़ोस है, वहां पे बहुत सारे लोग अच्छे होंगे, कुछ लोग बुरे तो नहीं कह सकते हम लोग, मगर वो आइडियल नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। आपने स्कूल में कभी बच्चे देखे होंगे कि जो शरारते ही करते रहते हैं, ठीक है, वो दूसरों को टीज करते रहेंगे, दूसरों को परेशान करते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो खराब लोग हैं, मगर प्रॉब्लम क्या है कि वो उनके साथ परेशानी क्या है, हमें ये चीज देखनी है कि उनके साथ परेशानी क्या है। तो उनको जो सूचनाएं मिली, उनको जो वातावरण मिला, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस की हैं वो किस तरह से करी, उन सब के आधार पर जो है उनके व्यवहार का अध्ययन हो सकता है, और उनके व्यवहार के अध्ययन के अनुसार जो है वो उनका जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करते हुए उनमें सकारात्मक व्यवहार जो है वो पैदा किया जा सकता है। अब ये तो हमने कहा कि उपागम है, अप्रोच चीज है, कि कोई बात कर रहा है कि हम जैविक संरचना को देखेंगे, कोई बात कर रहा है कि हम स्टिपुलस और रिस्पॉन्स को देखेंगे, कोई बात कर रहा है कि हम उन्हें ज्ञान देंगे और फिर बात करेंगे, एक आपके कहते हैं कि जो हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है हम उसका अध्ययन करेंगे, मगर करेंगे कैसे? अगला प्रश्न ये उठता है कि करेंगे कैसे। तो ये चाहे हम लोग कोई भी अप्रोच लें, चाहे हम कोई भी उपागम लें, मगर उसको करने के लिए, ये तो हमने ये समझा कि हमें कौन सा उपागम करना है, तो क्योंकि हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा अध्ययन जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ही करता है, तो उसको समझने के लिए हम बहुत सारी पद्धतियां यूज करते हैं, और इन पद्धतियों में जो होती हैं उनको में सबसे ज्यादा जो है आपका दैट इज अ ऑब्जर्वेशन। अगर हम बात कर रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन, आप इंटरव्यू ले सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पैन मतलब क्वेश्चन आंसर, एक इंटरव्यू हो गया, आपने वर्बल कम्युनिकेशन करी, अगर आप किसी से वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं या समवन इज नॉट कंफर्टेबल, वो कॉन्फिडेंट नहीं है आपसे बात करने में, तो उस केस में आप क्वेश्चनर बना सकते हैं। तो दीज आर द मेथड्स एंड दीज आर आल्सो द टूल्स, दो चीजें, ये मेथड भी हैं और ये टूल भी हैं कि जिनके द्वारा हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के अध्ययन के लिए। तो सबसे पहले जब मैं बात करूंगी तो ये बात करूंगी कि हमें जो भी हम लोग टूल लें, तो आपका सबसे पहली जो जरूरत है दैट इज द विश्वसनीय समझ का विकास, कि आप जिस भी व्यक्ति का अवलोकन कर रहे हैं उस व्यक्ति के साथ जो है वो आपका व्यवहार जो विश्वसनीय होना चाहिए, और जो आपका व्यवहार के निर्धारण में जो आपकी सहायता करेगा। और मनुष्य, क्योंकि एक मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम लोग जो है वी आर सोशल एंड कल्चर्ड एनिमल, वी नो वेयर वी हैव टू रिएक्ट एंड हाउ, हमें पता होता है कि किस परिस्थिति में हमें किस तरह से रिएक्ट करना है। छोटे बच्चे आपने देखा होगा कि मम्मी पापा होंगे तो उनके सामने ऐसे रो के लेट जाएंगे कि हमें नहीं खाना, हमें तो ये चाहिए, हमें तो वो चाहिए। मगर वही छोटा बच्चा जब आप किसी दूसरे के पास होता है तो वो कोई भी जिद नहीं करता। क्यों? क्योंकि वी नो कि हमें कहाँ पे किस तरह से रिएक्शंस करने हैं। कई बार हम लोग अपने से छोटों को डांट लेते हैं, मगर अपने से बड़ों की डांट पड़ने पे हम लोग क्या करते हैं? चुप लगा के बैठ जाते हैं। तो वो हम लोग क्योंकि मनुष्य हैं और एक जटिल प्राणी है मनुष्य, तो हमारे को उनका जो व्यवहार है और उनके कारक जो है, उन कारकों का जो अध्ययन करना है, उसके अध्ययन के लिए भी हमें जो है वो बहुत ही ध्यान पूर्वक अध्ययन करना होता है। क्योंकि सबसे बड़ी जो यहाँ पे दिक्कत आएगी, क्योंकि कुछ व्यवहार आपके आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं जो कि आपके रियल नहीं होंगे, तो जो आपके कारक हैं जो आपके व्यवहार को इन्फ्लुएंस्ड करते हैं, वो दो तरह के कारक हैं। एक आपके आंतरिक कारक होते हैं, एक आपके बाह्य कारक होते हैं। आंतरिक कारकों में वो कारक आएंगे जैसे कि आपकी मन की स्थिति कैसी है, आपकी शिक्षा कैसी है, आपका इकोनॉमिक साइकोलॉजी सोशियोलॉजिकल आपका जो वातावरण है वो कैसा है। तो हम कारकों के बारे में डिटेल में जो है वो बाद में बात करेंगे। बाह्य कारक में आ जाएगा कि आप किस वातावरण में है, आपका खाना पीना कैसा, आपका न्यूट्रिशन कैसा है, आपके पीयर ग्रुप कैसा है, आपके पेरेंट्स की एजुकेशन कैसी है, ठीक है। तो ये बाह्य कारक है, इनके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं मेथड्स की, और जो मेथड में सबसे पहले बात कर रही हूँ दैट इज अवलोकन। और मैं आपको बता दूं कि ऑब्जर्वेशन एक ऐसी पद्धति है जो कि हम चाहें या ना चाहें, मैंने अभी अभी आपसे एक बात करी थी कि हम जो है चेतना के स्तर को तीन भागों में बांटते हैं, चेतन, अवचेतन, अचेतन। और आप ध्यान रखेंगे कि आप देखिए कि कई बार आप लोग अवलोकन कर रहे होते हैं अनकॉन्शियस होके, आपको पता ही नहीं आप ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, मगर आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। समटाइम्स आप चेतन मन से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आप सामने वाले को देख रहे होते हैं कि वो कैसा लग रहा है, उसने किस तरह के कपड़े पहने हैं, वो किस तरह से बात कर रहा है। मतलब अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं तो आप अपने इस पूरे व्यवहार पे कंट्रोल करते हैं। सिमिलरली इफ समवन इज इन्फ्लुएंसिंग यू, अगर आप पे किसी का इम्पैक्ट आ रहा है तो आप पे किस तरह का इम्पैक्ट आ रहा है, उसके बोलने का, उसके बात करने का। हम कहते हैं ना कि समवन इज अ आइडियल, वो मेरे लिए आइडियल है, वो मेरे लिए मॉडल है। क्यों? क्योंकि हमें उनका हर एक जो व्यवहार है वो हमें समझ में आ रहा होता है। और वो कैसे आ रहा होता है? क्योंकि हम लोग जब उनके साथ, जब भी हम उन्हें देखते हैं टीवी पे, रेडियो पे सुनते हैं, या फिर अगर हमारे डे टू डे हमारे डेली में उनके साथ मुलाकात होती है, तो जब भी हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं तो क्योंकि हमें उनकी कुछ चीजें अच्छी लगती हैं। और वो अच्छी क्यों लगी? क्योंकि हमने उनका प्रॉपर अवलोकन वहां पे किया, टाइम टू टाइम वहां पे हमने उनका अवलोकन किया, चेतन मन से भी और अचेतन मन से भी कुछ चीजें हमें बस देखने ही लग जाती हैं। तो अवलोकन जो होता है वो आपका दूसरों की गतिविधियों को ध्यान में रखना होता है, और तब आपके ये विचार भी आ जाता है कि इन गतिविधियों के पीछे कारण भी क्या है, ठीक है। तो जो आपका कारणों के विषय में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना या नहीं पहुंचना, वो तो देखो हमें बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है, मगर समटाइम्स सिर्फ हम लोग उनकी गतिविधियां ही देख रहे होते हैं, अवलोकन कर रहे होते हैं, और दूसरों के विषय में सिर्फ उनको देखकर जानना जो है वो ही अवलोकन कहलाता है। अवलोकन का अर्थ जब हम बात करेंगे तो इसमें आपका जो अंतर्गत अध्ययन की जा रही घटनाओं के चरों के साथ किसी भी प्रकार का ऐच्छिक हस्तक्षेप ना करते हुए, मतलब कि जो भी वो चीजें सराउंडिंग में हो रही हैं उसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, आपको देखना है, आपको किसी को गाइड नहीं करना, आपको किसी को इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी है, बस जो हो रहा है उसे जैसा हो रहा है वैसा ही देखना है। अवलोकन हम दो तरह से देख करते हैं, एक तो हम लोग जो है वो वहां पे पार्टिसिपेट होके अवलोकन करते हैं, जैसे कि मुझे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का अवलोकन करना है तो मैं उस कम्युनिटी में रहने चली जाऊं और महीना 2 महीने उस कम्युनिटी में रहूं, उसको अवलोकन करूं और फिर उसके बाद जो है वो वहां पे अपने कुछ निष्कर्ष निकालूं, या फिर आपका नॉन पार्टिसिपेटेड होता है कि मैं वहां पे दूर से ही उनको देखती रहूं, वहां पे ना रहूं, वहां पे उनको दूर से ही ऑब्जर्व करती रहूं कि वो किस तरह से कम्युनिटी बिहेव करती है। सिमिलरली अगर हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअली को भी हम लोग उनसे बातचीत करके अवलोकन कर सकते हैं, या फिर दूर से सिर्फ उनकी जो सुबह से लेकर शाम तक वो क्या करते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप एक दिन में किसी को सही से अवलोकन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कंटिन्यूअस अवलोकन करना होता है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि जो मनुष्य है वो एक बहुत ही जटिल प्राणी है, एक दो दिन के लिए तो वो कुछ भी अपने व्यवहार को मॉडिफाई कर लेता है, मगर बहुत ज्यादा दिनों तक हम उस व्यवहार को मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसलिए आप जब उसको रेगुलर ऑब्जर्व करेंगे तो धीरे धीरे उसका चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन, सबकी जो आपकी जो एक रिफ्लेक्शन है वो आपको उसके व्यवहार में देखने को मिलती रहेगी। जो आपका अवलोकन जो है वो उसका जो आधार है वो पियाजे के विकासमत सिद्धांत के साथ है, और उन्होंने ही कई लोगों को अवलोकन किया और उसके आधार पर ही उन्होंने जो है अपनी थ्योरीज दी। आप भी अपने आसपास में जो भी वातावरण है उसमें रहने वाले लोगों का अवलोकन करें, उनको देखें और उनके साथ निष्कर्ष निकालें कि वो पर्टिकुलर लोग किस कम्युनिटी के हैं, उनकी किस तरह की विशेषताएं हैं, वो किस तरह की बात करते हैं, या किसी एक बच्चे को अवलोकन करें और उसके बारे में आप कुछ निष्कर्ष लिखें और फिर उस निष्कर्ष को उसके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें कि क्या मैंने जो निष्कर्ष निकाले ऐसा ही है या फिर कुछ अलग है। जैसे कि कई बार क्या बोलते हैं, नहीं, ये तो बहुत ही शर्मीली है, या ये बहुत शाई नेचर का बच्चा है, शी इज वेरी बोल्ड, वो बहुत ही बहादुर लड़की है। कैसे पता लगा? अवलोकन से, उनके साथ उठने बैठने से, उनके व्यवहार को जो है वो अध्ययन करने से हमें पता लगा कि समवन इज ए साई, समवन इज ए बोल्ड। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं अवलोकन की, तो अवलोकन की पद्धति में जो आपका निर्देशकों और सूचकों का निर्धारण आवश्यक है। कैसे करना है अवलोकन, अवलोकन की पद्धति? एक तो हमने समझ लिया कि अवलोकन हमें करना है किसी भी चीज का, तो हमें सबसे पहले एक तो हमें ये देखना है कि जो चीज जैसी है उसे एज इट इज ही अवलोकन करना है। और सबसे बड़ी बात है कि जिसका आप अवलोकन करें उसे तो किसी तरह से भी खबर नहीं हो कि उसका अवलोकन किया जा रहा है, क्योंकि हम जैसे ही इस चीज में पता लगेगा कि हमारा अवलोकन हो रहा है, हम एकदम से आर्टिफिशियल बिहेवियर में आ जाएंगे। आपको अगर रियल बिहेवियर किसी का देखना है तो आपको सिर्फ चुपचाप दूर से उसका व्यवहार ऑब्जर्व करना है और उसे किसी भी तरह से ये खबर नहीं होने देनी है कि वो अध्ययन में है। इसी तरह से दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना, देखिए एक मानव की जो है वो इतने सारा प्रक्रियाएं हैं, इतनी सारी प्रतिक्रियाएं हैं कि आपको क्या क्या अवलोकन करना है इस चीज पे आपको थोड़ा बहुत जो है वो सूचनाएं जो एक लिस्ट है वो आपको बना के रखनी पड़ेगी कि आप क्या अध्ययन करना चाहते हैं, आप किन बिंदुओं पे अध्ययन करना चाहते हैं। आपको उनकी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखनी है, उसका मेंटल सेटअप देखना है, उसकी क्वालिटीज देखनी है, क्या देखना है आपको, तो वो उन चीजों के बारे में आप सूची बनाएंगे और जब आप अध्ययन करेंगे तो पर्टिकुलर उसी बात का अध्ययन वहां पे उसी चीज को आप फोकस करेंगे, बाकी चीजों को आप छोड़ देंगे। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चा झूठ बोलता है, तो आपको ये अध्ययन करना है। अब वो बच्चा झूठ क्यों बोलता है ये आपको अध्ययन करना है, तो आप उन परिस्थितियों का अवलोकन करें जिन परिस्थितियों में वो बार बार झूठ बोलता है। इसके बाद जो भी आप जो अवलोकन करके जो भी चीजें एकत्र करें, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें, जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, बेटर है उन चीजों को आप कहीं नोट डाउन कर लें, क्योंकि हम लोग जो है वो एक कैपेसिटी है, हम लोग भूल जाते हैं और भूलने के बाद जो है वो आपके बाद आप हो सकता है कि आप उन चीजों को रिकॉल ना कर पाए, तो अच्छा है आप उन्हें वहां पे नोट कर लें। और नोट करने का जो आजकल सबसे बेस्ट तरीका है कि आप रिकॉर्डिंग कर लें। देखिए आपको सिर्फ सिर्फ वही चीज रिकॉर्ड नहीं, आप उस रिकॉर्डिंग में वर्बल नॉन वर्बल हर एक तरह की कम्युनिकेशन को बार बार देख सकते हैं, बार बार ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसी जो है जो आपके शाब्दिक जो है वो तो आपके इम्पैक्ट करेंगे करेंगे, साथ में आपके अशाब्दिक जो है जो नॉन वेरिएबल आपकी कम्युनिकेशन है वो भी आपके व्यवहार को इम्पैक्ट करती है। तो उन सब चीजों का भी आप वहां पे गहनता से निरीक्षण कर सकते हैं, और उन सब चीजों का आप जिस भी पर्पस के लिए, जिस भी उद्देश्य से आप उस अवलोकन को कर रहे थे उसको आप वहां पे कर सकते हैं। आज हम लोग जो है वो पद्धतियों में अभी अवलोकन कर रहे हैं। अवलोकन के बाद हमारे पास और भी अलग अलग पद्धतियां हैं, तो उनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। आज हम लोगों ने बात करी है उपागम की संरचनाओं की, जो आपके अप्रोचेस हैं उनके बारे में, कि मनोविज्ञान अगर हमारे व्यवहार का, हमारे अनुभवों का, हमारे मानसिक क्रियाओं के अध्ययन की प्रक्रिया है, तो वो अध्ययन की प्रक्रिया कैसे की जाएगी। अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोगों ने बात करी कि अलग अलग अप्रोचेस की, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने किस किस अप्रोच के अंतर्गत, हालांकि कहीं ना कहीं से इस तरफ से या उस तरफ से हम लोग वहीं पहुंच जाते हैं, मगर अलग अलग ने अलग अलग चीजों को विशेषताएं जो है वो दी है। उसके बाद हमने बात करी थी कि किस मेथड से, किस पद्धति से करेंगे, तो हम अवलोकन की बात कर रहे थे। धन्यवाद।